జగన్నాథ్ పురిధామకి నితాయ గౌర ప్రేమానందే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం జ్ఞానతిమిర అంధశ్వ జ్ఞానాంజన శరాద్వయ చక్షుర్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా తదామయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపాం సాగ్రజాతాం సహగనా రఘునాథాన్వితాం తం సుజీవం సాద్వైతాం సావధూతాం హరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగనా లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. భక్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే రాధేశ్వరీ విశ్వభానో సుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియ. వాక్షాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. కౌన్ సా దిన హై? దీక్షా మందిర్ మార్జన్. तो चैतन्य चरितामृत में एक अध्याय है गुंडीचा मंदिर की सफाई, तो हम सफाई के बारे में पढ़ेंगे गुंडीचा मंदिर की. तो मैं प्यार पढ़ूंगा उनका अनुवाद कंटिन्यूस पूरे चैप्टर का, बीच बीच में हो सके तो चर्चा करूंगा. चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आते हैं और यहाँ निवास करते हैं, और हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की भूमिका को अदा नहीं कर रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु कौन सी भूमिका को और कौन सा रोल कर रहे हैं? डिवोटी का, एक भक्त का, और दूसरा एक आचार्य का. तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, कलियुग के साधु गुरु दुष्कर्म जानिया, कि कलियुगा में साधु गुरु प्राप्त करना बहुत कठिन है. इसीलिए भगवान नवदीप में अवतरित हो जाते हैं कि स्वयं आचार्य की भूमिका लेते हैं. और आचार्य का मतलब है अपने आचरण से सब चीजों की शिक्षा देते हैं. और इसलिए कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण ने सोचा द्वापर युग के अंत में, आपने ना कैला धर्म सिखाना ना जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते का है कि हम खुद उन कार्यों का आचरण नहीं करते तो हमें अधिकार नहीं है इसकी शिक्षा देने का. और यही सारा सिद्धांत भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में वर्णित किया गया है. तो ऐसे कृष्ण क्या करते हैं, भक्त का भक्त के रोल में आते हैं. और भक्ति कैसे की जाए या कृष्ण के प्रति कैसे शरणागत हुआ जाए इसकी शिक्षा प्रदान करते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु का ये पहला ही साल था जब वो जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे. तो चैतन्य महाप्रभु ने, हम जानते हैं कि कितने साल बिताए जगन्नाथपुरी में, 18 साल चैतन्य महाप्रभु रहे. और टोटली तो चैतन्य महाप्रभु 24 साल की आयु में संन्यास ग्रहण करते हैं और बाकी 24 साल जगन्नाथपुरी में आते, तो ऐसे 48 साल हैं. उनमें से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन 2 साल के लिए जाते हैं, 4 साल के लिए वृंदावन जाते हैं 2 बार, और फिर 2 साल के लिए दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं. तो ऐसे 6 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी से बाहर रहे और लगभग 18 साल जगन्नाथ पुरी में निवास किया। और 18 सालों में से भी जो 12 साल हैं चैतन्य महाप्रभु कम से कम लोगों को मिलते थे, ना के बराबर। केवल 12 साल गंभीरा में निवास करते थे और अपने जो 2 भक्त हैं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, तो चैतन्य महाप्रभु सारे लोगों के साथ नाम संकीर्तन करते थे, जन सामान्य के साथ कृष्ण कथा की चर्चा नहीं करते थे क्योंकि उनसे परे हैं कृष्ण के जो वर्णन गाथा हैं, जनरल लोगों से दिमाग से परे हैं, वो उस धरातल पर नहीं हैं। तो महाप्रभु पर्सनली उनके साथ उन विषयों की चर्चा नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु केवल अपने 2 घनिष्ठ भक्त थे जिनके साथ एकांत में कृष्ण कथा का विस्तृत चर्चा करते थे दिन रात, वो थे स्वरूप दामोदर और एक थे रामानंद राय। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु 12 साल के लिए अपने आप को सारी चीजों से मुक्त ये करते हैं, दूर करते हैं और फुल्ली ऑब्जर्व हो जाते हैं जिस चीज के लिए वो अवतरित हुए थे। किस चीज के लिए अवतरित हुए थे? राधा रानी के भाव को आस्वादन करने के लिए। तो आखिरी के जो 12 साल हैं चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से बिताए। तो ऐसे ही जो शुरुआत का साल है जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करके आए और फिर निवास करने लगे काशी मिश्र का जो आलय है, काशी मिश्र का जो घर है, और फिर चैतन्य महाप्रभु राजा को बहुत अधिक आनंद हो रहा था। राजा प्रताप रुद्र ने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु जो जो कहे उन आज्ञाओं का पालन करने के लिए आपको तत्पर होना चाहिए, हर कार्य करने के लिए तुरंत तत्पर रहना चाहिए। तो कई सारे राजा के जो प्रमुख सेवक हैं या फिर जगन्नाथ मंदिर के जो अध्यक्ष हैं जिनको चैतन्य चरितमृत में पड़ेचा पात्र कहा गया है, उनको भी राजा ने ऑर्डर दिया था कि महाप्रभु और उनके भक्तों की बेस्ट केयर होनी चाहिए। महाप्रभु के जो भी मनोवांछित इच्छा है महाप्रभु बोलने से पहले उनकी पूर्ति के लिए तत्पर होना चाहिए। तो ये राजा का भावना था। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो शिष्य है गुरु के मन की बात को जाकर क्या जानकर क्या करता है, सेवा में लगता है। सेकंड क्लास का शिष्य है उसको बोलना पड़ता है, थर्ड क्लास का शिष्य है बोलने के बाद भी करता नहीं है, पीछे लगना पड़ता है। तो इस प्रकार से राजा वास्तव में फर्स्ट क्लास का डिसाइपल था महाप्रभु के लिए, राजा प्रताप रुद्र। तो ऐसे प्रताप रुद्र राजा ने सारे भक्तों को ये चीज बताए थे और सारे जो जगन्नाथपुरी के जो प्रमुख प्रमुख लीडर्स हैं वो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के लिए तत्पर होते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अरे जगन्नाथ रथ यात्रा नजदीक आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जगन्नाथ मंदिर का जो प्रमुख है, जो मंदिर की देखभाल करते हैं, उनको बुलाया और सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया और उन दोनों को कहा कि नजन पाशे प्रभु हसिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीला। तो महाप्रभु ने ये तीनों भक्तों को बुलाया, 3 काशी मिश्र को और जो मंदिर के जो अध्यक्ष हैं देखभाल करने वाले और तीसरे कौन थे सार्वभौम भट्टाचार्य, इन तीनों को बुला के कहा कि हम मैं क्या करना चाहता हूँ। हंसते हंसते महाप्रभु ने कहा कि मैं गुंडीचा मंदिर की धुलाई करना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, आपसे परमिशन चाहिए, आपसे अनुमति चाहिए। पड़ी छे आमी सब सेवक तुमार जे तुमार इच्छा से ही कर्तव्य हमार। तो जितने भी ये प्रमुख भक्त थे वो कहने लगे हम तो आपके सेवक हैं, आप जो कहोगे वही हम करने के लिए तत्पर हैं। विशेष राजा रा आज्ञा हया छे आमारे प्रभु आज्ञा जय से शीघ्र करी बारे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो राजा से यह आदेश प्राप्त हुआ है कि जो महाप्रभु कहेंगे उसका पालन करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। तो हमारा योग्य सेवा रहे मंदिर मार्जन उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि आपके लिए उचित नहीं है ये सेवा, लेकिन फिर भी आप इस सेवा को कर रहे हैं एक आदर्श को स्थापित करने के लिए, और ये आपकी क्या है, एक उचित लीला है, लीला के रूप में हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो हाँ आप कर सकते हैं। किंतु घट सम्मार्जने बहुत चाहिए, आज्ञा देह आज सब यहाँ आने दे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जो सफाई की सेवा है इसमें क्या चाहिए मुझे, कई सारे घट चाहिए, जल लाने के लिए झाड़ू चाहिए, तो आप क्या करो इन सब वस्तुओं को लेके आ जाओ। नूतन एक शत घट शत सम्मार्जने परिचा आनिया दिला प्रभु इच्छा जाने। तो टेम्पल के जो प्रमुख थे उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु की इस इच्छा को जाना और 100 जो घड़े हैं जल के लिए वो ला दिए, और मंदिर को झाड़ने के लिए या मंदिर की सफाई करने के लिए 100 झाड़ू ला दिए। आरदी ने प्रभात लिया निज गान श्री हस्ते सवार अंगे ले पिला चंदन। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को लिया रथ यात्रा के एक दिन पहले, मतलब आज के दिन, और इससे पहले कभी गुंडीचा मंदिर की सफाई होती नहीं थी। इवन आज भी गवर्नमेंट केयर नहीं करता कि सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन किसको इसका वो लगा रहता है, गौड़िया वैष्णवों को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये सेवा शुरू की है। तो जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो सारे आज के दिन हजारों की संख्या में गुंडीचा मंदिर में आते हैं और गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं। तो सेवा शुरू करने से पहले, और कब शुरू की थी सेवा, ऐसे नहीं कि पूरा लंच हो जाए, ब्रेकफास्ट हो जाए और फिर हम चलेंगे, इस चीज के लिए गुंडीचा मंदिर मार्जन। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जैसे ही सूर्योदय हुआ उसी क्षण सूर्य अभी निकल ही रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने 100 से अधिक भक्तों को अपने साथ लिया और साथ लेकर गुंडीचा मंदिर की ओर चले गए, और चैतन्य महाप्रभु ने उन सब भक्तों का स्वागत किया, उनको खड़ा किया गेट पर, और अपने हाथ से उनको चंदन आदि लगाया, उनको मालाएं पहनाई और उन सेवाओं में उनको लगा दिया। श्री हस्ते दिल सबारे एक एक मार्जने सबगन लैया प्रभु चलेला अपने। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं कि वो लीडर है तो वो कहेंगे ठीक है आप लोग सब लगे रहो और मैं चेयर में बैठ के क्या करूंगा, देखता रहूंगा, नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से हर एक भक्त के हाथ में एक एक झाड़ू दे दिया, एक एक मटका या घड़ा दे दिया जल के लिए, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ में झाड़ू आदि उठाया और उन भक्तों के संग में उन सेवा के लिए मग्न हो गए। गुंडीचा मंदिर गेला करिते मार्जन प्रथमे मार्जन लया करिल शोधन। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, झाड़ू के द्वारा सफाई की, झाड़ू के द्वारा पूरे मंदिर की सफाई करने लगे चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिला सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिला। और फिर उन्होंने मंदिर के अंदर की जो दीवारें हैं या छत आदि हैं उन सबको चैतन्य महाप्रभु ने सफाई की, और झाड़ू के द्वारा ही जो मेन सिंहासन आदि है उसको स्थाप किया और फिर से उस स्थान में उसको रखा। छोटा बड़ा मंदिर के कैला मार्जन शोधन पाचे तैचे शोधिला श्री जग मोहन। तो जितने भी गुंडीचा मंदिर के अंदर जितने भी छोटे मोटे जो मंदिर है, छोटे मोटे एरियाज हैं, उन सबको चैतन्य महाप्रभु ने साफ किया। और फिर जो जग मोहन है, क्योंकि कोई भी मंदिर है तो अलग अलग भागों में वो बटा हुआ है, जहाँ आप उस मंदिर में जाते हो जगन्नाथ टेम्पल में, तो वो जो टेम्पल है अंदर जहाँ भगवान निवास करते हैं रत्न वेदी कहते हैं उसको, जिस अल्टर में भगवान बैठे हैं वो रत्न वेदी है या रत्न सिंहासन, और उसी को गर्भगृह कहा जाता है। जब ओरिजिनली ये टेम्पल बना तो केवल वही था, उसके आगे और ये सब आगे आगे जो छोटे छोटे आगे जो मंदिर बने हैं सिक्वेंस में जहाँ से आप दर्शन के लिए जाते हो वो सब चीजें नहीं थी। हाँ, केवल जो गर्भगृह है वही था बहुत शुरुआत में। फिर अलग अलग जो राजा हुए हैं और उन्होंने एक एक चीज ऐड करते गए। फिर फाइनली जब शंकराचार्य आए जगन्नाथपुरी में, तो शंकराचार्य ने देखा कि भोग लगाने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है, तो उन्होंने गरुड़ स्तंभ के पीछे क्या बनाया, भोग मंडप। उन्होंने ऑर्डर किया शंकराचार्य ने और भोग मंडप बनाया। तो जो टेम्पल है वो तीन या चार भागों में बटा होता है। एक तो पहला है गर्भगृह जहाँ भगवान निवास करते हैं, और उसके बाद है मुखशाला। मुखशाला का मतलब है जहाँ से आप किसके मुख को देख सकते हो, कृष्ण के मुख को देख सकते हो, और जहाँ गरुड़ स्तंभ आदि है उसको नटशाला कहते हैं, जहाँ कृष्ण के लिए या जगन्नाथ के लिए जो देवदासियां हैं। शुरू उस समय देवदासियां हुआ करती थी, जो माता जी हुआ करती थी फुल टाइम, जो अपना जीवन पूरी तरह से जगन्नाथ को अर्पित करते थे और सब प्रकार की सेवाएं जीवन भर करती रहती थी। तो जगन्नाथ के लिए वो जो स्त्रियां हैं वो गीत गोविंद का गान करती थी रोज, और रोज जगन्नाथ के लिए डांस करती थी। हाँ, तो वहां से जगन्नाथ आनंद अनुभव करते थे। और फिर उसके पीछे क्या है, फाइनली भोग मंडपम है जहाँ भगवान भोग को स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ टेम्पल में वो गुंडीचा मंदिर में भी छोटी मात्रा में सब चीजें हैं। तो महाप्रभु ने इन सब चीजों को साफ करना शुरू किया। चारिदिके शत भक्त सम्मार्जनी करे आपने शोधेन प्रभु शिखन सवारे। चारों ओर सारे भक्त सफाई में जुटे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने द्वारा सब अपने आचरण से उनको सिखा रहे थे। प्रेमोल्ला से शोधे न लय न कृष्ण नाम भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। और ऐसे नहीं कि सफाई पे लगाया तो उनको टेंशन आ गया था। हाँ, एक कहा कौन सी सेवा दी, हम वही सेवा करना चाहते जो जो हमारे मन को अच्छी लगती है, और जिस सेवा में हम सबके सामने बड़े उठकर खड़े हो जाते हैं या फिर ग्लोरीफाई होते हैं, सब मुझे देखे, ऐसी सेवा हम करना चाहते हैं। हम बैकग्राउंड की सेवा नहीं करना चाहते। हम मतलब हम हर समय ऐसा सोचते कि ऐसी सेवा करो कि जहाँ सब मुझे देखते रहें कि मैं कितने अच्छा सेवा कर रहा हूँ या कितने अच्छी सेवा कर रहे हूँ। तो लेकिन हाँ, जब ये इस प्रकार की सेवाएं मिलती हैं, हम सोचते कि सफाई की सेवा कृष्ण को आनंद नहीं देगी। हाँ, कृष्ण की सेवा ये उन्नत सेवा नहीं है। हाँ, जो बड़ी बड़ी सेवाएं होनी चाहिए, ड्यूटी वर्शिप डायरेक्ट सेवा होनी चाहिए, प्रचार करने की सेवा या फिर बड़े बड़े गान या प्रवचन देने की सेवा होनी चाहिए, उसमें ज्यादा आनंद आता है। लेकिन वास्तव में सारी सेवाएं श्रील प्रभुपाद ने कहा एक समान है। क्योंकि जब हम भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं, इस पूरे लीला का यही तात्पर्य है। इस लीला से चैतन्य महाप्रभु केवल एक शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला को प्रकट किया है। हाँ, उसके अलावा कोई और चीज महाप्रभु अपने अनुयायियों के लिए स्थापित नहीं करना चाहते। और वो क्या प्रमुख शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु यही सिखाना चाहते थे कि कृष्ण आने वाले हैं। हम कृष्ण को हम बुला रहे हैं, तो कृष्ण आएंगे तो उनके लिए एक निवास स्थान हमें बनाना चाहिए। कृष्ण कोई गंदे स्थानों में रहना नहीं चाहते। तो वो मंदिर, मंदिर को क्या कहा गया है, हृदय की तुलना की गई है, या धाम शब्द के कई अर्थ हैं। भगवान का निवास स्थान जिसको धाम कहते हैं, या जहाँ नाम रूप गुण लीला का वर्णन हो रहा है वो धाम है, या भक्त का हृदय उसको भी धाम कहते हैं जहाँ कृष्ण निवास करते हैं। हाँ, जहाँ डिवोटीज निवास करते हैं वो भी धाम है। तो प्रमुख रूप से कृष्ण जहाँ निवास करते हैं वो धाम है, और जो हृदय है भक्त का वो धाम से अभिन्न है या मंदिर से अभिन्न है। तो इसलिए भगवान ऐसे गंदे हृदय में आना नहीं चाहते जो कोयले से भी बहुत अधिक क्या हो, काला हो। और वहां क्या होना चाहिए, हाँ, हृदय एक उसमें भगवान को बैठने के लिए, निवास करने के लिए आसन होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस सेवा के द्वारा वास्तव में हृदय को प्रिपेयर कर रहे हैं, हृदय को तैयार कर रहे हैं हाँ कृष्ण, ताकि कृष्ण आएंगे और इस हृदय रूपी मंदिर में हाँ निवास करेंगे। तो ये जो सारे जितने भी भक्त थे ये सब प्रकार से सेवा में लगे थे, क्लीनिंग की सेवा में, सफाई की सेवा में, क्योंकि गुरु का ये प्रमुख कार्य है। हम रोज मंगल आरती में गाते हैं, क्या गाते हैं, श्रृंगार तन मंदिर मार्च ना दो। ऐसे नहीं कि मंदिर हॉली क्लीन होना चाहिए, बाकी सब चीजें गंदी रहनी चाहिए। इवन व्यक्ति घर में भी रहता है तो घर की हर चीज क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, जब से मैंने आपके चरण कमलों की सेवा को स्वीकार किया है तब से मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि आमारा बले ते प्रभु आर किछु नाय। कि हे प्रभु, हाँ ये जो पुत्र है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, धन है, ये मेरा नहीं है, ये वास्तव में आपका है, लेकिन आपने मुझे क्या किया है, टेक केयर करने के लिए दिया है। इस एटीट्यूड से एक गृहस्थ को अपने घर में रहना चाहिए। हाँ कि मैं कौन हूँ, केवल टेक केयर वाले को क्या कहते हैं, हिंदी में बोलिए, ध्यान रखने वाला, जैसे कैशियर है, चौकीदार, जैसे कैशियर है, हाँ वो पैसे गिनता है लेकिन खुद के लिए नहीं, किसके लिए, स्वामी के लिए। तो उसी प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि एक जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको इस भांति वो रहेगा तो कभी भी इन चीजों से बंधेगा नहीं, अटैच नहीं होगा, आसक्त नहीं होगा, केवल वो आसक्त रहेगा कृष्ण से और वो इस सद्बुद्धि से, इस मनोवृत्ति से सेवा करेगा, इस मनोवृत्ति से पालन पोषण करेगा, जिम्मेदारी उठाएगा परिवार की, पत्नी की, बच्चों की, हाँ सब चीजों की, कि ये कृष्ण के हैं और कृष्ण ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की है ताकि मैं उनको, उनकी देखभाल करूं, उनको सर्व करूं, ताकि वो कृष्ण की ओर वापस हाँ चले जाए। तो इस प्रकार से हाँ एक भावना को लेकर हाँ व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो हृदय है ये भगवान का मंदिर है। तो चैतन्य महाप्रभु या प्रभुपाद ये जो गुरुवासदम है उसमें कहते हैं श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। तो मंदिर मार्जन करने का अर्थ केवल ये नहीं है कि जहां भगवान निवास करते अल्टर उसी की सफाई होनी चाहिए, पूरा जो बाकी घर है उसमें क्या हो जाए, धूल पड़ी रहे, गंदगी मची रहे, नहीं, वो सारी चीजें कृष्ण की है। तो कृष्ण जैसे प्रभुपाद एक बार मायापुर में थे तो मायापुर में ब्रह्मचर्य आश्रम के सामने से जा रहे थे तो प्रभुपाद ने अपना जो डंडा था स्टिक का जो लेके चलते हैं उससे ब्रह्मचर्य आश्रम के जो रूम से डिवोटीज के ऐसे डंडा लगाया जोर से और रूम को खोला, देखा कि इतना गंदगी है, ऐसे कपड़े रखे हैं और ऐसे जूते और सब चीजें गंदगी। तो प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मचारी मीन्स अनक्लीन। कलयुग में प्रभुपाद ने एक श्लोक बोला, भागवत में वो श्लोक आता है कि कलयुग में है ये लोग क्या रहेंगे, गंदे रहेंगे। तो प्रभुपाद ने तुरंत डांट लगाए और फिर वहां से वॉक करते हुए प्रभुपाद समाधि के पास गए, जो आजकल समाधि है ना मायापुर में, या फिर जो प्रभुपाद का भजन कुटीर है, तो वहां जो बहुत सारे छोटे छोटे वो दुकानें बनी है और एक तरफ सारे वो भक्तों का रहने का छोटा छोटा पुराने रूम्स है। तो प्रभुपाद उधर गए और प्रभुपाद ने टॉयलेट को, टॉयलेट जो था उसको क्या किया, स्टिक मारा दरवाजा, और बंद नहीं था अंदर, अंदर से तो बाहर से भी नहीं था। तो प्रभुपाद ने जैसे स्टिक आपने क्या कहेंगे उसको, जो भी उनके हाथ में है लकड़, उससे उन्होंने ऐसे जोर से मारा तो दरवाजा खुल गया, देखा कि इतना गंद भरा पड़ा है टॉयलेट में, हाँ मतलब फ्लश नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ ये गुरु का कर्तव्य है। प्रभुपाद ने कहा, तुरंत ये श्लोक बोला, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। प्रभुपाद ने कहा मंदिर मार्जन का यह अर्थ नहीं है कि जहाँ भगवान या राधा माधव निवास कर रहे हैं वही चीजें साफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि मंदिर का या घर का हर कोना क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। हाँ इसलिए प्रभुपाद जनरली कहा करते थे क्लीनिनेस क्या है, क्लीनिनेस मेक्स टू गॉडलीनेस, ऐसे कुछ है। तो प्रभुपाद ने कहा क्लीनिनेस इज गॉडलीनेस। तो मतलब जो सफाई है वही भगवत्ता है। तो इसलिए इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल हम जहां हमारा अल्टर है उसी को ही रोज क्लीन करें और बाकी चीजें क्या है अनक्लीन रहे, तो हम हमारी चेतना को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हम क्या करते हैं अपने सारे भक्तों के साथ मंदिर का हर जो कोना है हाँ उसकी सफाई में लगते हैं, लेकिन सफाई के साथ साथ क्या उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो सफाई क्या नहीं करेगी, आपके हृदय को क्लीन नहीं करेगी हाँ, क्योंकि कृष्ण की जब सेवा करते हैं उसमें जब एटीट्यूड मिक्स होता है प्रॉपर तब आप प्यूरिफाई होते हो, नहीं तो बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन तब तरह पाए कृष्ण पले प्रेमधन। बहुत जन्मों तक झाड़ू लगाते रहोगे तो भी हृदय का में झाड़ू कभी लगेगा नहीं, लेकिन इस भावना से कि हाँ ये कृष्ण के लिए है, कृष्ण गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, सेवक की दा ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, ये प्रिविलेज है मेरे लिए, इस भावना को हृदय में रखते हुए यदि हम सही मनोवृत्ति से सेवा करते हैं तो वो प्यूरिफाई होती है हमारी चेतना। जैसे दिल्ली मंदिर में भी तो जो वर्कर्स हैं वो वहाँ टॉयलेट और सब कुछ क्लीन करते हैं, उनका हृदय थोड़ी क्लीन हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन वही भक्त जब झाड़ू हाथ में लेता है टेम्पल को लगाने लगता है तो देखा तो अनुभव करता है कि हृदय क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस सेवा के साथ कृष्ण से संबंध को देखता है। हाँ, तो और उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन में जो भक्त लोग लगे थे और वो कैसे आनंद के साथ सेवा कर रहे थे, उत्साह के साथ सेवा में लगे हुए थे, और वो सारे भक्त सदैव कृष्ण नाम हाँ कृष्ण कृष्ण कहते हुए सारे काम कर रहे थे, और सब जगह धूल उड़ रही थी, और वो धूल चैतन्य महाप्रभु का जो गौर वर्ण है वो सारे धूल चैतन्य महाप्रभु के शरीर के ऊपर जाकर हाँ उसका लेपन हो रहा था हाँ। और महाप्रभु सेवा करते करते हाँ भगवत भावावेश में आकर रोया करते थे, तो उनके ऊपर जो धूल लगी हुई है उनके आंसुओं से क्या हो जाते थे, निकल जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इतना अधिक ऑब्जर्व थे गुंडीचा मंदिर मार्जन की सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा कोई भी हमें मिलती है हाँ तो उसमें सफलता का रहस्य क्या है कि वो सेवा में हम क्या हो जाए, निमग्न हो जाए, अपने आप को जल पूरा डुबो दे उसमें तो उसकी सफलता है। भोग मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण सकल आवास क्रमे करिल शोधन। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जहाँ अर्चा विग्रह के लिए भोजन आदि या भोग तैयार होता है उस स्थान को सफाई किया, आंगन आदि साफ किया, और सकल आवास आवास मीन्स घर जहाँ रहते हैं पुजारी आदि उन सब स्थानों को चैतन्य महाप्रभु ने साफ किया। त्रिनाधुले झिंकुर सब एकत्र करिया बहिर्वासे लय फैलाए बाहिर करिया। तो अभी उनके पास उठाने के लिए कुछ और नहीं था, जितना भी धूल और ये सब घास के तिनके आदि इकट्ठा हुआ था कूड़ा करकर वो फेंकने के लिए चैतन्य महाप्रभु और उनके पास कुछ बड़े बड़े पात्र नहीं थे, उन्होंने क्या किया अपना ऊपरी जो वस्त्र है हाँ जिसको बहिर्वास कहते हैं ऊपरी वस्त्र को निकाला और उसी को फैलाया और उसमें सारा धूल और सब भर भर के उठा उठा के पेट में डाल के बाहर फेंका करते थे। यही मत भक्तगण करे निजवासे तृणधूलि बाहिर फैलाय परम हरिषे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने बड़े ही आनंदित होकर उन सब चीजों को बाहर फेंक दिया। प्रभु कहे के कत करे याचे सम्मार्जन तृणधूलि देखिले जाने परिश्राम। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से भक्त ने कितनी धूलि कितना ये जो तृण आदि है ये सब बाहर निकाला है हाँ? जैसे किसी को कुछ सेवा दी जाती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ ना तो अलग अलग ग्रुप में डिवोटीज करते तो कई बार हम सोचते हैं उसने ज्यादा किए मैंने कम कर दिए हैं तो मिक्स कर देते कि पता नहीं चले कि मैंने कम किए हाँ? शॉर्टकट मारना चाहते हैं छुपना चाहते हैं। तो महाप्रभु उनको कह रहे थे कि मैं पर्सनली देखना चाहता हूं कि आपने कितने कूड़ा करकट लाया है, इससे पता चलेगा कि आपने कितनी अधिक सेवा की है। तो इससे समझ सकते हैं कि हमारे हर एक सेवा पर कौन मॉनिटर कर रहा है, साक्षात चैतन्य महाप्रभु। और इस एटीट्यूड से सेवा में लगना चाहिए, यह नहीं कि किसी ने सेवा बोल दी वो डिवोटी गायब है तो मैं अभी मुक्त हूं। नहीं, सेवा हमें चाहे किसी भक्त के द्वारा मिली है, जो भी डिवोटीज है उन्होंने हमें सेवा दी है, लेकिन सदैव ये भावना होनी चाहिए कि उस सेवा को साक्षात कौन मॉनिटर कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु। उससे आप बच नहीं सकते। जैसे जो व्यास तीर्थ थे मध्वाचार्य के शिष्य, उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुला के केला दिया था, प्रत्येक को एक एक केला दिया, आप जानते ना लड्डू का दूसरा स्टोरी है। एक एक केला दिया और उसमें उनके शिष्य थे जिनको बड़ा ही सब लोग कहते थे ये बेकार का है, निकम्मा है, जिनका नाम था कनकदास। कनकदास का नाम, कनक का मतलब है सोना। तो ये कनकदास पहले बहुत धनवान थे, तो ऐसे ये जब आश्रम में आए हैं उनके गुरु ने सबको एक केला दिया और कहा कि ऐसी जगह खाना कि जहां आपको कोई देखे नहीं। तो सारे शिष्य गए, आप सोच सकते हैं कैसे कैसे केला खाया होगा सबने, जहां जहां तहां वो पूरा कहां कहां जाकर खा रहे थे, सब बड़े आनंदित होकर आए। गुरु जी ने कहा बताओ बताओ कहां केला खाया आपने, तो कोई आनंद से कह रहा है मैं तो गया अपने बेडरूम में उसके पेड़ के नीचे कंबल लेकर उसके अंदर बैठ के केला खा रहा था, कोई कहता गुफा में चला गया, कोई कहां कहां चला गया, सब बोल रहे थे। लेकिन एक ही डिवोटी जो केला लेकर वापस आ गए थे, कनकदास, ये कर्नाटक के डिवोटी हैं, कर्नाटक तमिल तेलुगु आदि वहां के बहुत महान संत है कनकदास। तो वो कनकदास केला लेके हाथ में ले आए थे, सोचो क्लास में केला लेके बैठे हैं तो सारे भक्त हंस रहे थे, हम बाकी सब शिष्य क्या रहे हंस रहे थे, अरे देखो ये अकेला केला लेके आया है, हम सब तो खा के लाए, हम जीत गए हैं। तो कनकदास ने कहा कि हे गुरुदेव व्यास तीर्थ, मुझे कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिला कि जहाँ बिना कोई न देखे मैं उसको ग्रहण करूं। कौन देख रहे थे, कृष्ण। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्त स्मृतिर् ज्ञानम् अपोहनम्, भगवान हरे के हृदय में है। तो सेवा के समय इस भावना को हम रखेंगे तो हम अटेंटिव रहेंगे। तो सेवा, हरे नाम करना भी ये क्या है, सेवा है, चैंटिंग करना। तो वास्तव में चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें, जैसे आप चैंटिंग कर रहे हैं और कोई सीनियर भक्त आपके आसपास है तो आप बड़े ध्यान पूर्वक करते भी नहीं करते हो, मोर अटेंटिव कभी अटेंटिव नहीं होते आप। हाँ, जब महाराज है या कोई सीनियर डिवोटी बैठे बेचारे तो आप पूरा ध्यान पूर्वक पूरा हृदय को डालते हो, उनको पता चले कि कितना मोस्ट अटेंटिव हो मैं। तो वैसी स्थिति है, वास्तव में हम क्या करें, इस एटीट्यूड को धारण करें कि मेरे चैंटिंग ये जो सेवा है और ये हरि नाम लेने की सेवा हमें किसने दी है, आध्यात्मिक गुरु ने दी है। दीक्षा के समय क्या किया गुरु ने, थोड़ी झाड़ू दिया है आपको, हाँ गुरु ने क्या कह दिया, हरि नाम दे दिया आपको, क्या करो हर रोज बिना किसी रुकावट के हरि नाम का जप करो 16 माला। तो वो एक सेवा है, हर कार्य कृष्ण भावना में सर्विस है। हर कार्य, आपका सोना है, आपका भोजन लेना है, आपको अनेक प्रकार की सेवाओं में लगाया जाना है, हर कार्य, कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो सर्विस नहीं है, चाहे अपने घर में रहते हो चाहे आप टेम्पल में रहते हो। तो इस एटीट्यूड से यदि हम जीवन को डालते हैं तो फिर आप रिजल्ट देखेंगे कि कृष्ण दूर नहीं होंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं कि मंदिर में जो सेवा देते हैं उसी को सेवा कहते हैं, हाँ घर में रहते तो वो सेवा नहीं है, लेकिन ये गलत एटीट्यूड है। भक्तिविनोद ठाकुर ने इसके ऊपर एक पूरा गीत ही लिख दिया है, हमारा बोले थे प्रभु आर की चुना, ये गीत में सारी चीजें उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखी है। तो ये भावना हमें लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हरिनाम आप करते हैं तो भी हमें सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जो गौर वर्ण के हैं वो मुझे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं पूरी माला कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार से सदैव इस भावना के साथ हम अपने सेवा में लगे, चाहे हमें जो मर्जी सेवा मिले। बेगर चूजर नहीं होता, बेगर क्या नहीं होता, चूजर क्या कहेंगे, जो भिखारी है। बेगर कांट भी चूजर। तो जो भिखारी है उसको जो भी मिल जाए उसको क्या करना होता है, स्वीकार करना होता है। तो जब आप ये करने लगते हो कि नहीं 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 ये सेवा मुझे अच्छी नहीं लगती, आप मुझे ये दे दो, तो आप क्या करते हो, अपात्र हो जाते हो, शुद्धि होगी नहीं। सेवा तो कर लोगे आप, उससे आपके इंद्रियों को मन को तुष्टि मिलेगी, लेकिन उस सेवा के द्वारा गुरु और कृष्ण तुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि यश प्रसाद भगवत प्रसाद। और द्रौपदी ने कहा यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, कृष्ण को तुष्ट करोगे तो सारा जगत तुष्ट हो जाएगा। तो जैसे द्रौपदी के पास वो सूर्य ने अक्षय पात्र दिया था, तो दुर्वासा मुनि आदि आए, तो भगवान को उन्होंने थोड़ा सा उसमें से एक कण खिलाया जो बचा हुआ था, तो सारे मुनिगण का पेट भर गया। तो मतलब ये सेवा उन्होंने की, तो सेवा करने का उद्देश्य क्या है कि जिसके द्वारा आध्यात्मिक गुरु वैष्णव गण और कृष्ण संतुष्ट हो जाए। बस ये नहीं कि मेरी तुष्टि, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। और वास्तव में भक्त की पहचान ही है सेवा से। भक्त की पहचान किससे है, सेवा से, उसके नाम आदि से नहीं, कि उसको कितने श्लोका याद है, कितना विद्वान है, या फिर कितना अच्छा गाता है, या कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, या कितने लोग उसके कंट्रोल में है, ये नहीं। कि वो भक्त की पहचान है कि सेवा। आप किसी भी जगह जाते हो तो भक्त आपको क्या पूछते, जैसे दूसरे जगह गए तो वहां पूछते ना, प्रभु जी आप क्या सेवा करते हो मंदिर में, पूछते कि नहीं, ये थोड़ी पूछते कि प्रभु जी आप कितनी माला जप करते हो, नहीं, वहां क्या पूछते हैं, सेवा। मतलब भक्त और सेवा को अलग नहीं किया जा सकता, तो ये उसके साथ चिपका हुआ है। तो जब भक्त तभी कहलाता है जब सेवा उसके साथ क्या हुई है, चिपकी हुई है, लगी हुई है। तो इस प्रकार से हमें जो भी सर्विस हमें मिलती है उसको हमें करना चाहिए, और ऐसे नहीं कि जो हर जो हमारे जीवन की एक्टिविटी है उसको हमें सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और उस कार्य के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, गुरु कृष्ण और वैष्णव को प्रसन्न करना चाहिए। तो वास्तव में उस सेवा से हमारी शुद्धि हो सकती है। अब देखो एक सेवा की थी किसने, वो दुखी श्रीवास ठाकुर के घर में, ये सारे भक्त नाचते रहते थे, गाते रहते थे, और वो बेचारे अकेले क्या करते थे, पानी लाके घड़ों का लाइन लगाते थे। अभी उसको भी तो इच्छा हो रही होगी कि अरे इतने सब लोग नाच रहे गा रहे, मैं क्या ये पानी लाती रहती हूँ पूरे दिन रात, ये लोग सब नाच रहे गा रहे, महाप्रभु उनके भक्त आ रहे। लेकिन हमारे साथ भी ऐसे होता है ना कि वहां सब वहां जैसे जन्माष्टमी आ रहा है या फिर कोई और सर्विसेस होती है ना, तो हम सोचते हैं कि वहां तो ये सब लोग नाच रहे गा रहे क्लासेस सुन रहे, और मुझे गांठ डीटी किचन में बर्तन सफाई की सेवा में भेजा है, तो हम इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन जब हम उस सेवा को लगे रहते हैं तो वास्तव में महाप्रभु की नजर जाती है। पूरे भक्तवान नाच रहे थे श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, वो अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु सब नाच रहे थे, गा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, जा रहे थे, फिर हर रात्रि को आ रहे थे, लेकिन किसी ने कभी नोटिस नहीं किया। एक ही पर्सनालिटी ने नोटिस किया कि अरे श्रीवास इधर आओ मुझे बताओ ये जो घड़े रोज लाइन में लगाता है जल लाता है ये कौन है। तो उन्होंने कहा यहाँ एक माता जी है जिसका नाम क्या है, दुखी, ये दुखी लाती करती सेवा। तो महाप्रभु ने वो आइडेंटिफाई किया, किसी और ने नहीं आइडेंटिफाई किया। तो इससे पता चलता है कि हर सेवा के लिए महाप्रभु हमें मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं, उनके नजर में है। तो ऐसे महाप्रभु ने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जो कृष्ण और वैष्णव आदि की सेवा करता है वो दुखी कैसे हो सकता है। आज से इसका नाम क्या होगा, सुखी। इस प्रकार से हमें सेवा को लेना चाहिए। कोई भी सेवा मिले हमें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। अभी कोई आपको बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं दे रहा है, हाँ, आप सोचोगे नहीं, कई बार हम ड्रामा करते हैं, मैं तो अनक्वालिफाइड हूँ प्रभु जी, हाँ आप कृपा चाहिए और ना बहुत कुछ बोलते रहते हैं और हृदय में तो वो भावना है नहीं, हाँ तो ड्रामा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेवा को ले लो, सर्विसेज को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हो तो आप मैच्योर हो जाते हो, चाहे आप में योग्यता हो या ना हो, सेवा को ले लो। क्योंकि जब भक्तगण आप सर्विस भक्त आपको सेवा देते हैं तो कृष्ण और गुरु और वैष्णव साथ साथ क्वालिफिकेशन भी देते हैं, एम्पावर्ड करते हैं, हाँ क्या करते हैं, एम्पावर्ड हमें करते हैं, आवेश देते हैं, वो योग्यताएं भी प्रदान करते हैं। क्योंकि उनके वाणी के साथ जब गुरु शिष्य को सेवा देता है या वैष्णवगण देते, तो उनके मुख से जो वाणी निकलती है वो कई सर्वसाधारण शब्द नहीं है, उसके साथ सारी योग्यताएं निकलती हैं, हाँ और वो सारी योग्यताएं उस व्यक्ति के हृदय में जाती हैं और वो व्यक्ति फिर क्वालिफाइड हो जाता है उस सेवा को करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें हर प्रकार की सेवा को लेना चाहिए, लेकिन सर्विसेज को लेकर हमें क्या है, सदैव इस भावना को ध्यान में रखना चाहिए, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। ये हमारी सारी सेवाओं का सूत्र है, सारी सेवाओं को चेक करना है तो ये सूत्र है, इसको लागू करो कि मेरी सेवा का स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, क्या सेवा करके कीर्तनीय सदा हरि हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मालाएं छूट रही है। हम कभी बहुत सेवा करता हूँ लेकिन नहीं जप करना, जप नहीं हुआ आज, हाँ क्योंकि सेवा में लगा हुआ था। असली सेवा क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रमुख सेवा है। और ये श्लोक उन सेवाओं के लिए सूत्र है, सेवा को चेक करना है, सेवा का स्टैंडर्ड, खुद का एटीट्यूड, हाँ उसको चेक करने के लिए हमेशा इस श्लोक को लाओ बीच में कि मैं सेवा करके मुझ में बहुत घमंड आ रहा है, हाँ सेवा करके मैं इतना गर्वित हो गया हूं कि भक्तों को क्या कर रहा हूं, भगा रहा हूं या उनके प्रति अपराध की भावना हो रही है, क्योंकि मैं इतना बड़े पोजिशन में हूँ, इतना गर्वित हो गया हूँ इतनी योग्यताओं के कारण। तो जैसे ये हो रहा है इसका मतलब क्या है, सेवा अनुचित है। तो सेवा को हमेशा चेक करने के लिए क्या करना है, इसको लाओ, तृणादपि सुनिश्चिना, क्या वो सेवा से मेरे अंदर विनम्रता आ रही है या मेरे अंदर पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना बढ़ रही है, मतलब मैं अपनी वर्शिप करवाना चाहता हूँ या मुझे कुछ भौतिक गेन है उस सेवा से, या फिर प्रतिष्ठा ग्लोरिफिकेशन चाहता हूँ मैं अपना उस सेवा के द्वारा। तो इसका मतलब है सेवा के द्वारा क्या आ जाना चाहिए, तृणादपि सुनिश्चिना, सेवा के द्वारा और अधिक विनम्रता का भाव भक्त के हृदय में जागृत हो जाना चाहिए। तृणादपि सुनिश्चिना तरोरेव सहिष्णुना, हम सेवा के समय आपकी परीक्षा भी होती है, होती है कि नहीं होती, हाँ तो सेवा के समय आपको भक्त लोग डांट भी रहे हैं, कहेगा मेरी गलती क्या है, सब डांटते रहते, इतनी सेवा करो फिर भी क्या है, लोग गालियां देते रहते हैं, डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन नहीं, वास्तव में हमारी कौन सी चीज की परीक्षा हो रही है, सहनशीलता की। तृणादपि सुनिश्चिना तरोरिव सहिष्णुना, सुनिश्चिना नीचे, तृणादपि तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना, चाहे मेरा अपमान हो रहा हो या किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, क्या मेरे अंदर वो भावना है दूसरे भक्तों को आदर देने की, ये यदि नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि वो सेवा उचित रूप से नहीं हो रही है। तृणादपि सुनिश्चिना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, और क्या इस सेवा के द्वारा कीर्तन हो रहा है जो गुरु ने मुझे दिया है कीर्तन करने के लिए। हाँ कीर्तन क्या है, कीर्तन का मतलब है कीर्ति का गान करना, उसको कीर्तन कहते हैं। हाँ तो भगवान का नाम कीर्तन है, चार प्रकार के कीर्तन है, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन और लीला कीर्तन, तो ये सारे कीर्तन के अलग अलग वैरायटीज हैं। तो यदि उन सेवा के द्वारा हम कि कृष्ण का गुणगान नहीं कर पाते हैं और कंटिन्यूअसली कीर्तनीय सदा है, तो वो सेवा फिर उचित नहीं हो रही है। तो इसलिए ये सूत्र हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु कहे के कतक करे याचे सम्मार्जन तृण धूले देखी देखी ले जाने व परिश्रम। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि किसने क्या क्या सेवा की है, तो मैं पता चलेगा कि किसने कितना परिश्रम उठाया है मेरी सेवा में। हाँ, और हमें डरना नहीं चाहिए कृष्ण की सेवा में परिश्रम उठाने के लिए। तो जैसे प्रभुपाद ने कितना परिश्रम उठाया किसकी सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, वो अकेले चले गए। कितना परिश्रम, मतलब प्रभुपाद की तुलना किसी और आचार्य से नहीं कर सकते आप। ऐसा आचार्य ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। ऐसा उनका जीवन है, चरित्र है श्रील प्रभुपाद का, कि वो राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वहां से कहां दिल्ली में जाते थे, चौड़ी बाजार और ओल्ड दिल्ली में थर्ड क्लास के डब्बे में बैठ के जाते थे। कौन सी क्लास के डब्बे में, सुनने में अच्छा नहीं लगता, लगता है क्या, फिर बैठना कैसे अच्छा लगेगा वहां। हाँ, तो ऐसी स्थिति में प्रभुपाद जाते हैं, छापते बुक्स को, प्रिंटिंग करते हैं, सब कुछ अकेले करते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं गर्मियों में, इतना परिश्रम। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वास्तव में हमारी हर एक सेवा को देखते, जैसे यमराज के जो सारे पापों को लिखते रहते, क्या नाम है उनका, चित्रगुप्त, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो उसको। चित्र का मतलब है फोटोग्राफ और गुप्त का मतलब सीक्रेटली। हाँ, जो सीक्रेटली फोटोग्राफ्स लेता रहता है उसको क्या कहते हैं, चित्रगुप्त। तो हमेशा हमारे पीछे लगा हुआ है, क्या कहते हैं, सीसीटीवी। आप जाते हो ना मेट्रो में, तो वहां वो सीसीटीवी है, वो कहते हैं आप अंडर सीसीटीवी हो। तो उसी प्रकार से हम चित्रगुप्त के अंडर है यदि, और दूसरा क्या है, हम चैतन्य महाप्रभु के अंडर है, वो मॉनिटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं हमारी सारी सेवाओं को। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, और ये सीक्रेट है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी अपनी सेवा से हम वंचित नहीं होंगे। और वो सेवा हमें आगे बढ़ाएगी। तो सारे भक्तों ने अपना अपना जो धूल का, सारी धूल इकट्ठा की थी सब भक्तों ने, तो उन्होंने अपना अपना वो लगाया, क्या कहेंगे, एक जगह रखा, ढेर लगाया अलग अलग। तो महाप्रभु चेक कर रहे थे किसने कितना ढेर लगाया बड़ा, जिसका बड़ा बड़ा ढेर था महाप्रभु उसको ग्लोरीफाई करते थे। और फिर स्वयं ऐसे नहीं, फिर महाप्रभु ने अपना सेवा लेके आ गए, अपना ढेर, तो सारे भक्तों ने मिलकर जो जितना ऊंचा हो गया था उससे कई गुना महाप्रभु का था अकेले का। आप सोच सकते हैं चैतन्य महाप्रभु इतनी चपलता के साथ मंदिर का मार्जन कर रहे थे, उस सेवा को कर रहे थे। तो कई बार भक्तों को सेवा दी जाती है तो वो कहते हैं क्वालिटी सेवा होना चाहिए, इसलिए चपाती बनाएंगे तो आधा घंटा एक ही चपाती बेलते रहेंगे। देखिए पतली होनी चाहिए, घी लगना चाहिए, नहीं, क्वांटिटी भी होनी चाहिए सेवा की। हाँ, तो ऐसे नहीं कि आपको कहा गया है कि आप डीटीज के बर्तन साफ करो, और वो बर्तन साफ करने के लिए और फिर वहां 12:30 बजे आरती करना है जब भोग लगने का समय हो गया है, और आप कहोगे नहीं, मार्जन होना चाहिए, अपने हृदय को डालना है, बिल्कुल ना। तो ऐसा करेंगे तो भोग का समय निकल जाएगा। तो सेवा में हमेशा दोनों चीजें रखनी चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको कहा गया है कि आप कुछ सेवा दे दी तो आप पूरा एक हफ्ता उसको खींच रहे हो, कोई भक्त ने आपको एक सेवा बहुत दी और आप पूरा लंबा खींच रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड होना चाहिए और साथ साथ क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी। तो क्वालिटी चेक करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल क्या है, वो श्लोक त्रिनादपि, बोलिए सब लोग, क्वालिटी कंट्रोल चेक करने का ये है सूत्र है। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो ढेर है वो सबसे बड़ा था, यभ्यंतर करे लमार्जन पुनः सभा कार्य दिल करे यमंटान। तो फिर अभी महाप्रभु ने क्या किया, पहले तो ये सब बड़ी बड़ी चीजें गंदगी बाहर निकाली और फिर बाद में फिर अंदर गए भक्तों को लेकर, और फिर जाकर क्या किया, हर एक भक्तों को एरिया डिफाइन किया, एरिया दिया कि आप इस एरिया के सेवक हो, इस एरिया के सेवक हो, इस एरिया के सेवक हो। तो फिर और क्या करना है, डिटेल क्लीनिंग करना है। सूक्ष्म दुलित्रण कांकर सब करह दूर, बालमते शोधन करह प्रभुर अंतपुर। महाप्रभु ने आदेश दिया कि जितने भी छोटे छोटे तिनके हैं, बालों के कण आदि हैं, मिट्टी या धूल आदि है छोटी छोटी, उन सबको आप इकट्ठा करना अच्छी तरह से, जो अभ्यंतर है, अंतपुर है, भगवान जहाँ अंदर निवास करते हैं उसको अच्छे से क्लीन करना। सब वैष्णव लैया जबे दुई बार शोधिला देखे महाप्रभु रमने संतोष हैला। तो जब दोबारा उस मंदिर की सफाई हो गई, एक तो पहले इसमें बड़े बड़े चीजों को ले गए और सेकंड इसमें बिल्कुल माइनूट क्लीनिंग हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु ने यह जब देखा तो महाप्रभु को बहुत आनंद हुआ। तो हम देख सकते हैं कि महाप्रभु एक ही चीज से प्रसन्न होते हैं कि हम अपना हृदय को कितना क्लीन कर रहे हैं। मंदिर को क्लीन करने की तुलना क्या है, महाप्रभु इस चीज से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं कि कौन भक्त अपने हृदय को साफ करने में बड़ा तीव्रता के साथ लगा हुआ है। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, हर बार लगा पड़ा है, उसके पीछे पड़ा है, जैसे किसी के पीछे पड़ जाते हैं आप, व्यक्ति तंग आ जाता है। तो वैसे ही हमें क्या करना चाहते, हृदय के पीछा कर दो उस हृदय का, हृदय की सारी चीजें हट जाए, भूत के समान हृदय में क्या क्या निवास करता है वो सब चीजें चली जा सकती हैं। मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं, कुछ दिन पहले बंगाली में, तो उसमें एक लाइन थी, उसमें कहा गया था मनुष्य जीवन प्राप्त किया है लेकिन करह भूतेर काश, एक लाइन था कि आपके पास इतना अच्छा मनुष्य का जीवन मिला है लेकिन काम भूत की तरह करते हो, भूत के भूत का काम करते हो। तो इस प्रकार से वहां कहा गया है कि आपको क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन का कार्य है कृष्ण की सेवा करना, उसमें लगना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में पहली बार इतना आनंदित नहीं हुए, जब देखा कि दूसरी बार माइनूटली क्लीनिंग कर रहे थे तो वो बहुत खुश हो गए। तो इसे हम इसे सकते हैं, गुरु तब अधिक आनंद अनुभव करते हैं शिष्य कि वो इंटरेस्ट ले रहा है अपने हृदय की सफाई करने में। गुरु इससे बहुत अधिक आनंदित नहीं होते कि आपने कितने हजारों ग्रंथ बांट दिए, हजार लाइव मेंबर बना दिए, बहुत सुंदर मंदिर बना दिया और आपने बहुत कुछ कुछ किया, तो लेकिन वो तब देखते हैं कि वास्तव में ये अपना हृदय शुद्ध करने में उचित रूप से लगा या नहीं लगा। जैसे महाराज आदि है या प्रभुपाद है, चाहे जो मर्जी सेवा करे, वो हमेशा पूछेंगे कि मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हो कि नहीं करते हो, चैंटिंग आपका सुबह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सूत्र ये है नस पकड़ना। तो बाकी चीजें तो वैसे ही हो सकती हैं, लेकिन ये चीज नहीं है तो बाकी चीजें अनुचित है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सबको लगाया और महाप्रभु खुश हो गए। आरशत जन शत घटे जल भरे प्रथमे लया छे काल उपेक्षा करे। तो फिर बाकी जो भक्त हैं, सौ डिवोटीज जो जल मटके भरने के लिए गए, इंद्रदुम्न सरोवर से लाइन बनाया था उन्होंने, नरसिम्हा मंदिर से अंदर गुंडीचा मंदिर, और वहाँ एक दूसरे के हाथ में वो मटके देते थे और जल से फिर अभी सफाई हो रही थी, और फिर खाली जल और दूसरे सौ भक्त ले जाते थे। इस प्रकार से जल के द्वारा सिंहासन आदि हैं, दीवारें आदि हैं, अलग अलग जो कमरे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से धुलाया फर्श आदि पर, और महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से जहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठेंगे वो जो सिंहासन है उस स्थान को स्वयं धो रहे थे। भक्तगण करे ग्रह मध्य प्रक्षालन, निजा निजा हस्त करे मंदिर अमर जंत भक्त लोग इस प्रकार से पानी डालकर महाप्रभु के हाथ में पानी देते थे और उसके द्वारा उसको स्वीकार करते थे। और कुछ भक्त क्या करते थे, उस जल को प्रथमे कलिल प्रभु मंदिर प्रक्षालन उद्वादो भित्तिग्रह मध्य सिंहासन, तो सिंहासन आदि को महाप्रभु सफाई कर रहे थे और स्वयं महाप्रभु उस अल्टर के ऊपर चढ़े उसकी सफाई करने लगे। और कुछ भक्त जल लाकर देते थे, तो जल लाकर चैतन्य महाप्रभु को देते थे। तो साथ ही साथ महाप्रभु जब अपने घुटनों पर, जैसे किसी ऊपर जगह चढ़े हो तो घुटनों पर आप बैठ जाते हो, एक प्रकार से आपके पाँव पीछे होते हैं और आप ऐसी सफाई करते हो। तो महाप्रभु सिंहासन की सफाई कर रहे थे, तो कुछ भक्त बहुत चलाक थे, हाथ में कुछ जल देते थे और पीछे से उसके ऊपर छोड़ते थे, कहा चरणों के ऊपर, और दूसरे में लाइन लगा के पीते रहते थे। चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट चरणामृत, बाल्टी में नहीं गिरेगा, सीधा कहाँ गिरेगा, मुंह में। तो ऐसा वंडरफुल अभिषेक सेरेमनी हो रहा था। तो महाप्रभु को पहले पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो फिर ये सब होता रहा और सब स्थानों में पानी पानी हो गया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने वस्त्र निकाले, निज वस्त्र कैला प्रभु ग्रह सम्मार्जन, मतलब सेवा में अपने आप को लेकर अपनी सब चीजों को लगाने के लिए महाप्रभु कह रहे हैं। भगवत सेवा में हमें क्या नहीं करना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं रखना चाहिए। जो भी हमारे पास योग्यता है, सामर्थ्य आदि है, क्वालिफिकेशन है, धन आदि है, उन सबको क्या करना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। हाँ, ये महाप्रभु ने अपने कपड़े निकाल दिए सारे, और कपड़े निकाल कर उससे क्या किया, जल डाला, तो फिर वो जल को तो ऑब्जर्व करने के लिए कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, फैन ऑन करो, ऐसे तो नहीं होगा, ऑन ऑफ फैन ना कुछ। उन्होंने क्या किया, मैं वस्त्र निकाल दिए और उससे बिल्कुल क्लीन किया। इससे ये चीज है कि हमारे पास वो सेवा जो हमें दी गई है कृष्ण की है, तो हमें अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार हर चीज को क्या करना चाहिए, पोर करना चाहिए, डाल देना चाहिए उसमें। उसमें हानि नहीं है, उसमें क्या है, लाभ ही लाभ है। तो महाप्रभु ने उन सारे कमरों को और वस्त्रों को अच्छी तरह से चमकाया। शतगट जले हैला मंदिर मार्जान, मंदिर शोधिया कैला जैन निजमान। तो महाप्रभु सोचने लगे कि ये जो मंदिर मार्जन हुआ है, ये इतना चमक रहा है, और उसकी चमक के साथ साथ देखा कि मन भी क्या हो गया, भक्तों का बिल्कुल निर्मल हो गया। निर्मल शीतल स्निग्ध करेला मंदिर आपन हृदय जैन धरिल बाहिरे। तो वास्तव में वो सेवा इतने अपने हृदय आदि को डालकर प्रेम पूर्वक की थी, हर चीज को उन्होंने डाल दिया था उस सेवा में। हाँ, उसी को भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा है, मानस देहो जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरे पास अपना मन है, देह है, जो भी मुझसे संबंधित है, हर चीज को मैं अर्पित कर रहा हूँ आपकी सेवा में। तो ये जो भक्तगण इस प्रकार से उन्होंने सेवा की थी, तो उनको बाहर भी देख रहे थे तो उनका हृदय इतना क्लीन नजर आ रहा था, उनका मन इतना साफ नजर आ रहा था। शत शत जल जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्थान नाही के हा कुपे जल भरे। तो वो सरोवर से जल भर रहे थे तो सरोवर बिल्कुल फुल हो गया था। तो फिर कुछ लोग जहाँ कुआं था वहां से पानी लेकर हजारों घड़े जल लेके आते थे सफाई के लिए। जल भरे धरम घर धोया करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नाहि सुनि। तो सब लोग जब सेवा कर रहे थे तो चिल्ला नहीं रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि कोई चीज मांगनी भी है तो कृष्ण कृष्ण कह रहे थे। क्या कह रहे थे, जोर से लाउडली। तो दूसरा समझ जाता था कि उससे कुछ मांग रहा है, तुरंत उनको प्रदान करते थे। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थान, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। तो किसी को मटका लेना होता था वो कहते थे कृष्ण कृष्ण, तो दूसरा देता था, और उसको दूसरे को देना होता था तो उसको प्रदान करता था। तो मतलब सेवा में क्या होना चाहिए, नाम, नाम का होना बहुत आवश्यक है, भगवत नाम सेवा के साथ साथ। इसलिए हाँ प्रभुपाद कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, घर में जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन साथ साथ क्या करो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय जय कहे से कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम हैल संकेत सब कामे। प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेश करे शत जनेर काम। बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली ये जो प्यार है, एक तो पहली बात है कि बहुत स्वीट है, दूसरा है कि एक एक प्यार में क्या है, भंडार है ना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का। तो यहाँ कृष्णदास कविराज कहते हैं प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, उस सेवा में क्या कर रहे हैं, प्रेम में आवेश आवेशभूत होकर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। एकले प्रेमावेश करे शत जनेर काम, जब उस सेवा में आपके पास आध्यात्मिक बल है, भगवत नाम का उच्चारण आदि आप बिल्कुल गंभीरता से करते हो, श्रवण कीर्तन में गंभीर हो, तो आपके पास इतना सामर्थ्य आ जाता है। यहाँ कृष्णदास कविराज कह रहे थे कि महाप्रभु अकेले 100 जनों का काम कर रहे थे, कितने भक्तों का 100। हाँ तो ऐसे कई भक्त होते हैं वो 10 भक्त का काम कर लेते हैं ना, कुछ माताएं होती हैं 10 माताओं को लगाओ कुकिंग के लिए, वो अकेले माता कर लेती है, ऐसे होते हैं कुछ डिवोटीज। तो यो क्या सीक्रेट है कि आध्यात्मिक बल। शतहस्ते करन जन क्षालन मार्जन, प्रतिजन पाशे जाए करन शिक्षण। मानो कृष्णदास कविराज कह रहे थे कि ऐसा हो रहा था कि महाप्रभु के 100-100 हाथ हैं, इतने सारे हाथों से महाप्रभु सफाई कर रहे थे, खुद का एरिया सफाई भी कर रहे थे लेकिन दूसरे के पास भी जा रहे थे, उसको बता रहे थे कि कैसे सफाई करने, खुद उसके सामने। भाल कर्म देखि तारे करे प्रशंसा, मने ना मिले ले करे पवित्र भरसा। तो महाप्रभु दोनों चीजें करते थे। हाँ क्या, जब किसी के पास जाते थे इतना अच्छा सेवा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करते थे, प्रशंसा से हमें प्रेरणा मिलती है। हाँ और जो प्रशंसा करते हैं, और दूसरा क्या है, जब कोई भक्त बहुत ढीला ढाला है, सेवा कर ही नहीं रहा है, तो उसको डांट भी लगाते थे। तो ये दोनों चीजें आवश्यक है। तुम्हें भाल करे अच्छा शिका अन्य रे, यही मत भाल कर्म से हो जन करे, कि तुम अच्छा कर रहे हो तुम क्या करो, जाओ दूसरे को भी सिखाओ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु गुरु बनने का आदेश दे रहे हैं, जा रहे देखो तारे को कृष्ण को, जो तुमने सीखा है। गुरु का मतलब क्या है, जो हमने सीखा है, जितना भी हमने सीखा है उतना जाके दूसरों को सिखाओ बस। तो जब आप दूसरों को सिखाते हो तो आपको ज्यादा मिलता है। हाँ भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि जितना आप लोगों को कृष्ण दोगे उससे कई अधिक गुना कृष्ण आपके हृदय में बैठेंगे। हाँ जितना अधिक इस प्रकार से आप लोगों को देते हो। हाँ कृष्ण एकता सुनिया सबे संकुचित हया, भाल मते कर्म करे सबे मन दिया। तो महाप्रभु डांटते भी थे, ग्लोरीफाई भी करते थे। तो ये सब देखकर कुछ लोग लज्जित हो जाते थे, फिर वो अटेंटिव हो जाते थे अपनी सेवा में, नहीं 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 मैं गलती कर रहा हूँ, हाँ मुझे अपनी सेवा को करना है। तबे प्रक्षालन कैला श्री जग मोहन, भोग मंदिर आदि तबे कैला प्रक्षालन। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने जो किचन वगैरह है जगन्नाथ का उसको सफाई किया, हाल्टर का एरिया आदि सब सफाई किया, नटशाला पाकशाला कृष्णदास कविराज के दिन सबको उन्होंने क्लीन किया। और फिर इस प्रकार से जब ये सफाई हो रही थी तो फाइनली सब हो ही गया था, थोड़ा सा वो कर रहे थे तो उस समय घटना घटित हुई। क्या हुआ, हेन काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल, प्रभु चरण जुगे दिल घट जल। चैतन्य महाप्रभु अल्टर में थे, मैं गर्भगृह में सफाई कर रहे थे, तो एक बंगाली भक्त आया जो सुबुद्धि और सुस्थिर था। वो आया, एक घट भर के जल लाया था उसने, और उसने क्या किया, महाप्रभु के चरणों में डाल दिया। से जल लया अपने पान कैला, तहा देखी प्रभु रमने दुख रोष हैला। तो उस वैष्णव ने क्या किया, उनके चरणों में जल डाला और अल्टर के अंदर ही उसको क्या किया, पी लिया। तो ये देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो गए, यद्यपि गोसाई तारे हयाचे संतोष धर्म संस्था पन लागी बाहिरे महारोष। दो चीजें हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अंदर से तो खुश हो गए थे हाँ कि इसको भक्तों के चरणों का जल में आफेत है, हाँ भक्तों का जो उचित है उनके जो चरण धुले हुए जल आदि है इसको पीने के लिए इसमें क्या है उसको फेथ है, क्योंकि ये तीन चीजें हैं भक्ति में महाबल देती हैं। भक्त भुक्त अवशेष भक्तों के पद का धुला हुआ जल उनका जो उचित है, और एक क्या चीज है भक्त पद धुली भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष ये साधने या भक्ति का महाबल कि भक्तों के चरणों की धूलि और भक्तों के चरणों का धुला हुआ जल और भक्तों का उचित ये भगवत भक्ति में हमें बहुत स्ट्रांग बल प्रदान करता है। तो महाप्रभु तो आनंद से खुश हो गए हैं और इन तीन चीजों के लिए फेथ या दृढ़ विश्वास या श्रद्धा लाना बहुत कठिन है क्योंकि हमारे अंदर भौतिक चीजों से बहुत भरे पड़े हैं। तो महाप्रभु खुश थे लेकिन फिर महाप्रभु बाहर से क्रोधित हो रहे थे, क्यों? क्योंकि वो आचार्य हैं तो इसके द्वारा उनको शिक्षा देनी है कि टेम्पल के अंदर या जो अल्टर के अंदर या डीटीज के सामने क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से ग्रहण नहीं करना चाहिए किसी का धुला हुआ जो चरण धुले हुए जल है। हाँ तो इसको प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं आगे कि डीटीज के सामने टेम्पल हॉल के अंदर या डीटीज के सामने हमें किसी का गुणगान नहीं करना चाहिए, भगवान या उनके भक्तों के अलावा किसी का गुणगान नहीं करना चाहिए। जो कोई बड़ा व्यक्ति क्यों ना आया हो, हम पॉलिटिशियन आता है कई बार मंदिर में, जो फिल्म स्टार्स वगैरह आते हैं या सो कॉल्ड लोग आते हैं, कृष्ण के सामने किसी का गुणगान नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है, इवन आध्यात्मिक गुरु भी आ जाए तो डीटीज के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। डीटीज सामने है तो उनके सामने टेम्पल हॉल में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये क्यों ये सारे रूल्स? क्योंकि इन रूल्स को हम यदि फॉलो करते हैं तो हमें ये भावना हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है कि ये जो अल्टर में राधा कृष्ण है ये संगम रवर की मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, साक्षात कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण है। इसलिए वो छोटे ब्राह्मण ने कहा प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप मूर्ति मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात क्या हो? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हो। तो महाप्रभु ने उनको डांटा तो महाप्रभु ने क्या किया, क्रोधित हो गए लेकिन महाप्रभु ने डायरेक्ट उनको डांटा नहीं, उन्होंने क्या किया उनके सीनियर को बुलाया, किसके अंडर है भक्त महाप्रभु ने बुलाया, कौन है वो सीनियर अभी देखते हैं। शिक्षा लागी स्वरूप डाकी कहे लतारे यही देख तुम्हारा गौड़िया व्यवहार है, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा गौड़िया, गौड़िया भक्त कहते थे, इसमें दोनों है, एक तो महाप्रभु के भक्तों के अलग अलग कैटेगरीज दी थी, एक गौड़िया भक्त जो बंगाल के है और एक थे उड़िया भक्त जो कहाँ के है उड़ीसा के है, तो अलग अलग नाम इसी में आते हैं। तो उन्होंने इनके जो लीडर थे स्वरूप दामोदर, सारे भक्त इनके अंडर है, जितने भी डिवोटीज है यहाँ बंगाल में या उड़ीसा में वो सारे भक्त स्वरूप दामोदर के अंडर थे। तो स्वरूप दामोदर को बुलाया और उनको कहा देखो देखो तुम्हारा ये जो बंगाली वैष्णव है इसका व्यवहार को तो जरा देखो, कुछ एटिकेट्स की शिक्षा देते हो कि नहीं देते हो तुम इसको। ईश्वर मंदिर मोर पद धोयला से जल अपनी लैया पान के, कि मंदिर के अंदर मेरे चरणों को धोया है और उसी जल को इसने पिया है, यही अपराधे मोरा कहा हबे गति तुम्हारा गौड़िया करे एते गफाई जति, उन्होंने कहा इस अपराध के द्वारा मेरी क्या गति होगी, इस तो तुम्हारे जो गौड़िया भक्त है बंगाली भक्त है इसने तो मुझे बहुत बड़े झंझट में फंसा दिया है, एक अपराध है डीटीस के प्रति। तबे स्वरूप गोसाई तारा घाड़े हाथ दिया, उनके क्या है गर्दन पकड़ ली, यहाँ हाथ दिया उन्होंने, आप किसी को पकड़ के जाते हो, स्वरूप दामोदर ने भक्त की गर्दन पकड़ी और बाहर ले गए, जोर से उसको बाहर ले गए। पुनः से प्रभु पाय करे लविनाय आज्ञा अपराध क्षमा करे तेजुआ, फिर वो स्वरूप दामोदर महाप्रभु के पास आते हैं और वो आकर उनसे क्षमा याचना करते हैं। तबे महाप्रभु रमणे संतोष हायला सारे करे दुई पाशे सबारे बसायला। तब महाप्रभु बहुत खुश हो गए कि हाँ उस भक्तों को थोड़ा दंडित किया। हाँ, और फिर महाप्रभु ने जब ये सारा क्लीनिंग हुआ तो फिर क्या होना चाहिए? प्रसाद। हाँ, क्योंकि इस पर भक्तों का लाइफ बड़ा अच्छा है। बाकी जगत में लोग प्रसाद को फॉलो करते हैं, प्रसाद में भोजन को फॉलो करते हैं, लेकिन यह हम क्या करते? फॉलोड बाय कृष्ण प्रसाद, प्रसाद हमें फॉलो करता है। कितना वंडरफुल लाइफ है कि नहीं? लोग भाग रहे हैं दिन रात, किसके लिए भाग रहे हैं? भोजन के लिए, मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं। लोग कहते ना, हम काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे चलेगा? हाँ, पेट नहीं चलेगा, आपको चलना पड़ेगा पेट भरने के लिए। तो मतलब लोग भाग रहे हैं भोजन आदि के पीछे, लेकिन यहाँ कृष्ण भक्त कुछ भी करते हैं, लेक्चर हो जाता है तो फॉलोड बाय कृष्ण प्रसाद, यात्रा जाते हैं, और ट्रेन को भी फॉलो करके प्रसाद आता है। अब देखो ट्रेन कितना स्पीड से जाती है, फिर भी वो कोई ना कोई स्टेशन में वहाँ प्रसाद, हमसे पहले पहुँच जाता है, हम पहुँचने से पहले। तो कितना वंडरफुल है कृष्ण भावना, कितना क्या है, यही तो कहा एक्चुअली कृष्णदास कविराज ने कहा, करह विचार विचार करेले पावे चित्त चमत्कार। चैतन्य रा उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की मर्सी या चैतन्य महाप्रभु की कार्यकलापों को थोड़ा विचार करो, मनन करो, महाप्रभु के अलग अलग कार्य, और इन सब का मनन करोगे तो कुछ ही क्षण में आप पाओगे कितना अद्भुत है, चमत्कारिक है सारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन। और है चमत्कारिक है कि नहीं? हम बताए, हर एक व्यक्ति बताए क्या चमत्कार है आपको लगता है, बोलिए एक सेंटेंस में, कृष्ण भक्ति में क्या चमत्कार आपको महसूस होता है? महसूस होता है मतलब क्या ऐसी चीज, जैसे मैंने ये कहा कि ये चमत्कार है, क्या प्रसाद हमें फॉलो करता है, ऐसा कुछ आप बताइए। हम अभी कवर कर रहे हैं, बोलिए ट्राई कीर्तन, क्या डांस, हाँ नचाता है हमें, ये भी एक अद्भुत है। और भक्तों के संग में कोई एंग्जाइटी नहीं है, चिंता से रहित हो जाते हैं भक्तों के संग में होते, चाहे जहाँ मर्जी हो। अब देखो कितना चमत्कार है, कल रात्रि में कितने मॉस्किटोस काट रहे थे, काट रहे थे। लेकिन फिर भी हम कितने आनंदित हैं, है कि नहीं? यही कृष्ण भावनामृत का ये ग्लोरी है, यही है एक्चुअली। दुख नहीं महसूस होगा, जितना आप आगे पॉजिटिव लो उसको, कृष्ण से कनेक्ट करो। तो कौन, जिस व्यक्ति को रात को नींद नहीं आई, मोस्ट जो भी यहाँ सो रहे थे वो टोटली रात्रि जागरण कर रहे थे सर। एक तो कल उन्होंने फास्टिंग करवाया और रात्रि जागरण तो, लेकिन लेकिन फिर कृष्ण भावना, कृष्ण के संबंधित कार्य में हम लगते हैं, सर्विसेज, पूरा जॉय, आनंद, कितना चमत्कारिक है कि नहीं? और क्या हो सकता है?
हाँ,
स्पिरिचुअल घाटे में नहीं रहेंगे आपको, भौतिक घाटा हो सकता है। हाँ, तपस्या के चले सारे लोग वहाँ ना, धूप में चलते हुए कोई आनंद ही हो रहा था सबको ना, ये वैसे ही है। मुझे एक श्लोक याद आ रहा था चलते समय, हाँ ब्रह्म संहिता का, और वहाँ ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के आखिरी जो श्लोकाज हैं उसमें वर्णन करते हैं आध्यात्मिक वैकुंठ के वातावरण का वर्णन करते हैं। वहां कहते हैं कथा गानम, कथा मतलब वैकुंठ में जो लोग बोलते हैं वो बोलना नहीं है, वो तो गाते हैं, मतलब जैसे हमें बोलते हैं कि प्रभु जी क्या चाहिए आपको, या फिर आप इधर आ जाइए, वहां क्या है ऐसा बोलना नहीं है, वहां क्या है सीधा सिंगिंग है। आप बोलो, ट्राई करो आज एक दूसरे अमेजिंग। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड टोटली डिफरेंट है, और इसलिए तो इतना ब्लिसफुल है। तो क्यों कहा गया है सच्चिदानंद विग्रह, तो वहां आध्यात्मिक जगत में कथा गानम है, कथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी। तो वहां चलना भी क्या है, डांस है, क्या है? तो आपको कल लग रहा था कि नहीं, आप चल नहीं रहे थे उस धूम में, क्या हो रहे थे? ऐसे उछल उछल कर नाच रहे थे। और वास्तव में धाम का लक्षण है जगन्नाथ पुरी का, इतने पैर गर्म हो रहे थे। हाँ, लेकिन क्या है, आप नाच रहे थे, तेजी से नाचते हुए, जैसे कि भगवान जगन्नाथ से कितना प्रेम भर भर के सीधा आप जा रहे हो आलिंगन करने, हाँ महाप्रभु, तो वैसे ही है एक्चुअली। कृष्ण भावना जैसा ग्लोरियस लाइफ नहीं है, इसलिए हमेशा इसमें मग्न लगे रहो, छोड़ो नहीं, और जितना भी अधिक जाओ इसमें डूबो, गहरे डूबते जाओ, डूबते जाओ, जितना अधिक डूबोगे उतना ही अधिक आप क्या करोगे, दिव्य आनंद की अनुभूति करोगे। इस भौतिक जगत की कोई भी विपदा आपको बाधा नहीं देगी, मतलब वो रोक नहीं सकती, तो इसलिए इस प्रकार से ग्लोरियस है कृष्ण भावना मृत की एक्टिविटीज सारी चीजें। और क्या है, कोई और नया एक्सपीरियंस? सहनशीलता क्या हो रही है, सहनशीलता बढ़ती है। और देखते हैं, पहले मटेरियल भौतिक जीवन में हम थे, भक्ति में आने से पहले तो इतने टॉलरेंस नहीं था, है कि नहीं? घर में मैं सोच रहा था आपके फैन इतने स्लो चले, ये तो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे और इतनी गर्मी में। क्योंकि यहाँ भक्तों के संग में है, वहाँ हम प्रॉपर संग में और प्रिपेयर नहीं है, तो संग में क्या है, शक्ति आती है और उस संग में सारे क्वालिटीज हम में ये हो जाती है, इम्बाइब हो जाती है, आ जाती है। तो वहाँ हम अपने उस संग को हम ले नहीं जाते घर में, या उस संग को क्रिएट नहीं किया है हमने, भक्त इसलिए तो वो घर में हमने वो वातावरण क्रिएट नहीं किया है। अभी तो हम कहते हैं कि हम सब भक्त हैं, लेकिन वो कहाँ, वो भक्त का इन्वायरमेंट कहाँ है, नहीं है। तो वो इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट करना, तब वास्तव में आप ये अनुभव कर पाओगे, अन्यथा नहीं। हाँ, बच्चा सोचता है मैं स्वामी हूँ, वहाँ पत्नी सोचती कि मैं बॉस हूँ, होम मिनिस्टर, और वहाँ स्वामी सोचता है कि मैं तो मैं कमा के लाता हूँ, ये खाते कैसे हैं, मैं नौकरी नहीं जाऊँगा तो भूखे मर जाएंगे, तो सोचता कि मैं पालन करता हूँ। तो यही है, हर एक व्यक्ति वही इसी प्रकार से, इस एटीट्यूड से जी रहा है, कैसे होगा, तो यही है। तो कृष्ण भावना बहुत चमत्कारिक चीज है और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु, इसलिए हमें इतना सौभाग्यशाली सोचना चाहिए। ठीक है, हाँ, कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से कनेक्ट हुआ है। महाप्रभु यहाँ है, खासियत क्या है इस आंदोलन की, चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए इतना इफेक्टिव है और इम्पोर्टेंट है। तो हम कहाँ थे अभी, ब्रह्म संहिता का बता दिया मैंने आपको, चमत्कार। तो उससे पहले हम यहाँ थे कि चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए, सारा क्लीनिंग आदि हुआ, तो फिर क्या होना चाहिए, प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु ने फिर अरेंज किया, फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये भी डाटा बीच में कि जो भक्त क्या करते थे, और महाप्रभु देखते थे कि किसका कूड़ा कम है किसका ज्यादा है, तो जिसका कम था उसको दंड देते थे। क्या दंड देते थे महाप्रभु, कि आपने कम सेवा की है, कम कूड़ा लाए इकट्ठा किया है, तो आपको दंड है कि आपको दो चीजें भक्तों को खिलानी पड़ेगी, क्या है, पीठा पाना। हाँ, पीठा पाना क्या है, खीर और एक प्रकार का जो जगन्नाथ का स्वीट होता है, पीठा को केक्स कहते हैं, प्रभुपाद ने इंग्लिश में केक्स लिखा है, तो पीठा पाना खिलाना होगा। तो जिन भक्तों ने कम सेवा की थी वो क्या क्या उनके दंड था। फिर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने फिर प्रशासन का अरेंजमेंट किया और उससे पहले चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर क्लेम किया तो उसके बाद कहाँ आ गए, नरसिम्हा मंदिर, जो छोटा सा नरसिम्हा टेम्पल है जिसको यज्ञ नरसिम्हा कहा जाता है, उसको क्लेम किया। और क्लेमिंग करने के बाद चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे। हाँ, महाप्रभु ने थोड़ा सा विश्राम किया और वहाँ नाचने लगे, कीर्तन करते हुए। चारिदिक के भक्तगण करे न कीर्तन, मध्य नृत्य करे प्रभु मत्त सिंह सम। एक पागल सिंह के समान चैतन्य महाप्रभु भक्तों के बीच नाच रहे थे और चारों ओर सब भक्त मंडली अराउंड बन के बनाकर नाच रहे थे। स्वेदकंप वैवर्ण अश्रु पुलक हुंकार, निज अंग धुई आगे चले अश्रुधार। तो महाप्रभु सारे जो षड विकार है भाव के, अष्ट सात्विक विकार, वो प्रकट कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। चारिदिक के भक्त अंग कैल प्रक्षालन, श्रावणेरा मेघजन करे वरिशान। और महाप्रभु के आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो पिचकारी के समान निकल रहे थे। और जितने भक्त राउंड में नाच रहे थे उनके शरीर को भिगा रहे थे पूरी तरह से। महाउच्च संकीर्तन आकाश बरेला, प्रभु रघु दंड नृत्य भूमि कंपाहेला। इस कीर्तन के द्वारा पूर्ण आकाश भर गया और चैतन्य महाप्रभु के नृत्य के द्वारा जो भूमि है वो कंपायमान होने लगी, नाचने लगी, हिलने लगी। स्वरूपे उच्च गान प्रभु सदा भाई, आनंदे उदंड नृत्य करे गौर राय। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर जब गाते थे तो महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता था। उनके कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु पागल की भांति नाचते थे और बहुत जोर जोर से उछलते थे। यही मत कतक्षण नृत्य ज करिया, विश्राम करिला प्रभु समय बुझिया। तो महाप्रभु फिर बहुत समय तक नाच रहे थे, फिर थोड़े वो रुक गए और थोड़ा सा उन्होंने विश्राम किया। आचार्य गोसाईर पुत्र श्री गोपाल नाम, नृत्य करे थे तार आज्ञा दिला गौरधाम। महाप्रभु नाच के रुक गए, फिर उन्होंने अद्वैत आचार्य के जो पुत्र थे गोपाल उनको कहा तुम नाचो। तो वो छोटा सा जो बच्चा है वो नाचने लगा। प्रेमावेश नृत्य करे है लामूर्छिते, अचेतन है याते हा पड़े लाभूमिते। तो वो जो बालक महाप्रभु की आज्ञा से नाचने लगा, नाचते नाचते मूर्छित होकर नरसिम्हा टेम्पल में गिर पड़ा। और देखा अद्वैत आचार्य ने कि उनका पुत्र मूर्छित हो गया है और उसकी सांस नहीं चल रही है, तो बहुत क्षुब्ध हो गए, विचलित हो गए और अपने पुत्र को गोपाल को अद्वैत आचार्य ने अपने गोद में लिया। नरसिंह मंत्र पढ़ी मारे जला छाटी, हुंकारे रा शब्द ब्रह्मांड जाय फाटी। तो अद्वैत आचार्य उसके फेस में जल मार रहे थे, छिड़काव कर रहे थे, ये सब चीजें कर रहे थे, जोर जोर से उसको पुकार रहे थे, हुंकार कर रहे थे, गोपाल गोपाल। कृष्णदास कविराज कहते कि इतना जोर से वो पुकार रहे थे कि सारा ब्रह्मांड फट जाए। आने का करेला तबु नहाए चेतन, आचार्य कांदे न कांदे सब भक्तगण। तो सब चीजें उन्होंने करके देखी लेकिन बालक अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आ रहा था। तो अद्वैत आचार्य जोर जोर से रोने लगे और अद्वैत आचार्य का रोना देखकर सारे भक्त जो गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के लिए आए थे वो भी रोने लगे। तबे महाप्रभु तार बुके हस्त दिला, उठ गोपाल बलि उच्च स्वरे कहिला। उन्होंने कहा, फिर चैतन्य महाप्रभु आए बुके हस्त दिले, बुक का मतलब है हृदय। तो महाप्रभु ने उनके हृदय में हाथ रखा और कहा उठ गोपाल, हे गोपाल उठो उठो। तो गोपाल उठने लगा। सुनते ही गोपाल रहे लचेतन, हरि बलि नृत्य करे सर्व भक्तगण। जैसे महाप्रभु का ये सुना वाणी को उठ गोपाल, तो वो गोपाल उठ गया और सारे भक्त जोर से हरि बोल का उच्चारण करने लगे और वो गोपाल फिर से नृत्य करने लगा। यही लीला वर्णिया छेन दास वृंदावन, अतएव संक्षेप करी करी वर्णन। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं इस लीला का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में किया है, मैं इसको बड़ा संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो वाणीनाथ आचार्य वगैरह हैं उन सबको आज्ञा दिया और कई प्रकार के जो प्रसाद के व्यंजन हैं वो लाए, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को बिठाया प्रसाद देने के लिए, लाइन में बिठाया, और चैतन्य महाप्रभु पर्सनली प्रसाद सर्व करने लगे। हरिदास ठाकुर को लाइन में बिठा रहे थे तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास भले प्रभु डाके घने घन, हरिदास हरिदास तुम आओ प्रसाद देने के लिए। हाँ, तो वो दूर से खड़े होकर बोल रहे थे, भक्त संगे प्रभु करो प्रसाद अंगीकार, ए संगे वसीते योग्य नाही मुई चार। चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप सब भक्तों के संग में प्रसाद ग्रहण कीजिए, मैं तो बहुत घृणित हूँ, नीच हूँ, निंदनीय हूँ। हाँ, मैं आप भक्तों के संग में बैठकर प्रसाद लेने की योग्यता मुझ में नहीं है। कौन कह रहा है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। पाछे मोरे प्रसाद गोविंद दिबे बहिर द्वारे, मन जाने प्रभु पुना नाम लीला तारे। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं आप मुझे ना पिछले दरवाजे से थोड़ा सा कुछ ऊंची स्थान प्रसाद दे दो, हाँ उसी को मैं ग्रहण करूंगा। तो फिर सारे भक्त लोग बैठते हैं प्रसाद के लिए, और चैतन्य महाप्रभु पर्सनली अपने हाथ से वो अलग अलग मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स आदि हैं, उनको सर्व करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य, और फिर सब तो प्रसाद शुरू नहीं करते क्योंकि कौन नहीं है वहाँ, चैतन्य महाप्रभु बैठे नहीं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बिठाते हैं, और कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो प्रसाद सर्व करते हैं तो उनके कुंजली में, हम क्या कहते हैं इसको, हाथ में इतना प्रसाद आता था, एक एक भक्त के प्लेट में 5 लोग खाए इतना प्रसाद डालते थे, महाप्रभु सर्व करते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस लीला को करते हैं गुरुदीक्षा मंदिर महार्जन, और इस लीला के द्वारा हमें प्रमुख शिक्षा देते हैं कि कल क्या होने वाला है, कृष्ण का आगमन होने वाला है। हाँ, कृष्ण हमारे हृदय में आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने हृदय को उचित निवास स्थान बनाना है, उसको क्लीनिंग करना है। इसलिए चैतन्य शिक्षा स्तम की पहली शिक्षा यही है, चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का क्लीनिंग करना है, मार्जन करना है। तो कैसे कैसे मार्जन हो सकता है चित्त रूपी दर्पण का भी, इसमें तो झाड़ू तो नहीं जाएगा अंदर, हाँ, और एक मटका पानी भी नहीं जाएगा, 1-2 लीटर कुछ लीटर पीते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, होटल जाते हैं, वो ज़्यादा पी रहे हैं, लेकिन हृदय सफाई के लिए नहीं, पेट सफाई के लिए, हाँ, या महाप्रभु हृदय की सफाई की बात करते हैं। हाँ, तो आप बताइए, हर एक भक्त बताएगा कि हृदय एक कृष्ण का मंदिर है, तो इस मंदिर को साफ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को पकड़ें जिनके द्वारा हमारा हृदय रूपी मंदिर का मार्जन हो सकता है ये कार्य करने से। सब लोग सीधा बैठ जाइए, सांस लीजिए जोर से, और अभी थोड़ा सा 2 मिनट हाफ मिनट आपके पास सोचने के लिए समय है, और आप सबको बोलना है एक एक चीज़, बड़ा विचार कीजिए कि क्या चीज है। रिपीटेशन बहुत लाइट मत दीजिए कि हाँ चलो नाम करेंगे, और भी डिटेल्स बोल सकते हैं, कुछ और चीजें, ठीक है, प्रभुज, फिर एक माताजी, एक प्रभुज, बोलिए, हृदय रूपी मंदिर को साफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से हृदय, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, वंडरफुल,
जो सेवा
मिले उसको हमें लगातार करना चाहिए, कभी कभी नहीं। भक्तों का संग करना, भक्तों का दर्शन करना, सात्विक शुद्ध, सही है, कृष्ण प्रसाद होना चाहिए, सात्विक प्रसाद, सात्विक भोजन भी नहीं, कृष्ण प्रसाद, हाँ, श्रवण और ग्लोरीफाइंग कृष्णा, कृष्ण का अधिक से अधिक गुणगान करो, बहुत पावरफुल है। जी, एक्चुअली जब आप कृष्ण का गुणगान करते हो तो उनमें 3 चीजें इन्वॉल्व है, एक वक्ता, एक श्रोता, और एक जिज्ञासु। तो पद्म पुराण कहता है कि ये तीनों में अलग अलग प्योरिफिकेशन होता है। सबसे कम प्योरिफिकेशन होता है जो श्रोता है, कौन है? श्रोता में जो सुनता है। लेकिन जो ईगर उत्साह ईगर के साथ ईगरनेस के साथ लौल्य और जिज्ञासा की भावना के साथ सुनने के लिए बैठता है उसका अधिक प्योरिफिकेशन होता है। यानी कि अभी मंदिर मार्जन जाना है तो क्लास होने वाली है ना, या फिर सैटरडे प्रोग्राम है या बागवत क्लास जाना है तो वो ठीक है थोड़ा बहुत हाँ। और अधिक प्योरिफिकेशन होता है वक्ता का, शास्त्र कहते हैं। हाँ बोलिए, अभी कहाँ? इधर 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 प्रभु।
24 घंटे कृष्ण मनन करना,
24 घंटे मनन करना, अच्छा है। हम क्या करते हैं? श्रवण करते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, मनन नहीं करते। मतलब जब गाय या बंदर को देखा है आपने, बंदर खाता है तो कैसे खाता है? बैग्स भरता है अपने, पहले क्या करता है? बैग्स तो भरता है। वैसे भक्तों को करना चाहिए, वो भक्तों को लागू होता है। मुझे तो ये चीज पहले समझ में नहीं आती थी जो छोटा था वहाँ, जो गाय संभालता था, तो गाय बैठ के वो पूरे दिन चबाती रहती थी, ये क्या करती क्या है? तो फिर अभी पता चला शास्त्र में पढ़कर कि कितना इम्पोर्टेंट है गाय की एक्टिविटी, वो मननम है। तो गाय खाती रहती है, आप गाय चराने जाओ तो पागल की तरह चलेगी चलेगी, दौड़ते हुए खाती रहेगी दिन भर। जैसे समय बैठेगी अपना चुगाली करती रहती, पूरा बिल्कुल छोटा छोटा करके हमें आराम से। और बंदर भी है, बंदर बैग भरता है, डालो तो बंदर कितने सारे डालता रहता, फिर आराम से खाता रहता। तो वैसे ही मननम है। जब हम किसी सब्जेक्ट मैटर को सुनते हैं पढ़ते हैं तो उस पर हमें विचार करना चाहिए, मननम करना चाहिए, हाँ उसका मंथन करना चाहिए अलग अलग प्रकार से उस सब्जेक्ट का। तो उससे क्या होगा कि वो जो विषय है हाँ वो हमारे हृदय में स्थित हो जाएगा और उससे हम बहुत अधिक हम प्योरीफाई हो जाएंगे। इसलिए मननम एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। हाँ इधर गुरु की आज्ञाओं का पालन करना, इससे भी मंदिर का मार्जन होगा। और नई नई यात्राओं में जाना और विग्रहों के दर्शन करना, ये अमेजिंग है। हमने मेरे मन की बात कही है। और यहाँ बुक रीडिंग करना, ग्रंथों को पढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रीब्यूशन बाद में, पहले क्या? पढ़ना। हाँ प्रभुपाद जा रहे थे एक कार में, तो एक माताजी सिग्नल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। उनको पता नहीं कि उनके शहर में प्रभुपाद आए हैं, तो वो बांट रही थी और प्रभुपाद अकेले बैठे थे पीछे, ड्राइवर था। और उस माताजी ने देखा ना पीछे ना कुछ ग्लास क्लोज होगा, ड्राइवर को बुक दिया, उसने पीछे दे दिया और वो प्रभुपाद थे, खुद की बुक। और वो बुक कौन सा था? उपदेश अमृत। प्रभुपाद ने साइन किया, लंबा साइन, कहा क्या आपने बुक पढ़ा है, और वापस कर दिया और निकल पड़े। वो रोने लगे, हाँ उसने बुक लिया और जो प्रभुपाद का साइन देखा और लिखा ग्रंथ पढ़ा है क्या, वो उसने एक भी बुक नहीं पढ़ा था, प्रभुपाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो प्रभुपाद चले गए। इस प्रकार से ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो सदैव हम उत्साहित रहते हैं हाँ कृष्ण भक्ति में। उत्साह खत्म होने लगता है जब हम ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, हाँ मृत होने लगते हैं हाँ। इसलिए ग्रंथों को रोज पढ़ना चाहिए हमें, कम से कम 1 या 2 घंटे। प्रभुपाद कहाँ करते थे? आप मुझसे प्रेम करते हो तो इसका मतलब है कि आप मेरी चीजों से भी प्रेम करते हो, ग्रंथों को पढ़ते हो। मतलब आप किसी से प्रेम करते हो और उसकी वाणी को नहीं आप चाहते, वो कुछ आपको आदेश देता है कहते नहीं नहीं हाँ। जैसे कोई पत्नी कहती है कि मैं आप पति की बहुत प्रेम करती हूँ, एक लोग बेचारा कहते जरा नींबू पानी बनाओ गर्मी के दिन है, नहीं नहीं फ्रिज में जाओ ठंडा पानी वहाँ है, नींबू ले लो काटो, शुगर किचन में है, तो प्रभुपाद से प्रेम करना प्रभुपाद के आंदोलन से, मीन्स प्रभुपाद की वाणी। तो ग्रंथ से हम ये भी सीखते हैं कि प्रभुपाद और महान आचार्यों के और कृष्ण की क्या डिजायर है। इसलिए ग्रंथों को पढ़ना एक अच्छा ये है हमारे चित्त को शुद्धि के लिए, रोज पढ़ना चाहिए। एक्चुअली हमें जीवा में पानी आ जाना चाहिए बुक को देखकर, क्या आ जाना चाहिए? हाँ, ऐसे जैसे अभी इमली का नाम लेते हैं या फिर किसी और पदार्थों का नाम लेते हैं तो जीवा में क्या होता है? पानी आ जाता है। तो वैसे ही ग्रंथों का नाम लेने मात्र से, अरे चैतन्य चरितामृत, तुरंत हमारी जीवाई हो जानी चाहिए। भगवत गीता, भागवतम, कब मैं पढ़ूंगा? इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, रूप रघुनाथ पदे हरि बे आकुति कबे हम बुझब से युगल पीरती। कब मैं लालायित होऊंगा रूप से लेकर, ये जो छह गोस्वामी हैं उनके ग्रंथों को पढ़ने के लिए, कब से? तब मैं उनको समझूंगा, तभी मैं राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझ सकता हूँ। तो वहां अभी ये उपदेश अमृत का इंट्रोडक्शन है, उसमें आप भी पढ़ सकते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ रीडिंग। और चरणामृत ग्रहण करना अमेजिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है प्यूरिफिकेशन का, चरणामृत ग्रहण। कितने लोग रोज चरणामृत पीते हैं? रोज पीना चाहिए किसी भी स्थिति में चरणामृत। मध्वाचार्य ने रूल बनाया अपने टेम्पल्स में, इस संप्रदाय में मध्वाचार्य ने कहा अपने अनुयायियों को, कोई भी व्यक्ति मंदिर आए उसको वो चरणामृत लिए बिना नहीं जाना चाहिए। चरणामृत क्या करता है? हमारे सो चरणामृत दिया विषय भुलायमो। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कृष्ण ऐसा कहते हैं कि मैं अपना चरणामृत देकर उस व्यक्ति के अंदर जो विषय वृत्ति है, विषय भोग की भावना है, उसको भुला देता हूँ चरणामृत को रोज पीने से। और मंत्र भी क्या है वो? अकाले पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन महाप्रभु तो कहते मैं पुनर्जन्म लेना चाहता हूँ। क्या है वो? न धनम न जनम न सुंदरे कविता वा जगदीश कामय ममा भवतार भक्ति रहे। जन्म आने के लेना चाहता हूँ। रह जाए प्रॉपरली तो ले सकते। कुछ डिवोटीज हैं। हाँ, गंगा जल क्या है? अभी चरणामृत ये तो नदी है चरणामृत की, क्या है? गंगा जल रखो, राधा कुंड आदि का जल रखो, रोज थोड़ा सा पान करो। ये एस्पेक्ट से, अलग अलग एस्पेक्ट से डिवोशनल सर्विस के, अपने आप को प्यूरिफाई करने की। कुछ ऐसे डिवोटीज हैं वो एक भी दिन नहीं बिताते एकादशी के अलावा कि वो जगन्नाथ प्रसाद नहीं ग्रहण करते, वो ड्राई राइस लेके जाते हैं एवरी डे। वो धाम को बोल नहीं सकते, जगन्नाथ उनका प्रसाद आने, प्रसाद लेने से पहले सुबह रोज एक जगन्नाथ प्रसाद का दाना मुंह में, कितना प्योरिफिकेशन हम सोच नहीं सकते। ये सारे जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं ये हमारा प्रेम को बढ़ाते हैं कृष्ण के प्रति। हाँ, ये चरणामृत भी है, ये छोटी सी चीज है करने के लिए, देखने के लिए क्या है चरणामृत भी नहीं, बिग एक्टिविटी थोड़ी है, लेकिन वास्तव में कृष्ण की कृपा वस्तु पूरी भरी पड़ी है और वो शुद्ध करने का सामर्थ्य रखते हैं। और इतना फेथ और श्रद्धा के साथ, इसलिए जब रेगुलर सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो इन सारे एस्पेक्ट्स के प्रति हमारा फेथ बिल्ड होता है। जितना आपका श्रद्धा स्ट्रांग होगा उतनी ही वो चीज आपको प्यूरिफाई करेगी। हाँ, जैसे रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य रोज श्री रंगम में रंगनाथ का चरणामृत को पीते थे। तो एक दिन वहां का जो हेड पुजारी था उसने कहा, ये तो इसको लोग क्यों इतना सम्मान आदि देते हैं, इससे ही सब सुनना चाहते हैं और ना बहुत फेमस हो रहा है श्रीरंगम में, मैं इतना मेन पुजारी हूँ श्रीरंगम का, रंगनाथ का, कहते ये मेरे इसमें कांटा है, इसको खत्म करना है। तो पहले तो कहा कि आप ना हमारे घर में आइए प्रसाद के लिए, पत्नी के पास विष की बोतल दे देगी, हाँ कुकिंग करोगे तो क्या करो उसमें विष डालो। पत्नी ने पक्का काम किया, वो आइडियल फॉलोअर थी अपने पति की, उसने सारा विष वगैरह डाल के रख बनाया भोजन आदि, रामानुजाचार्य आए। लेकिन रामानुजाचार्य के सरल वृत्ति और भगवत भक्ति को देखकर वो जो स्त्री थी उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, मैंने मेरे पति की आज्ञा का पालन किया है, लेकिन आप इस भोजन को मत ग्रहण कीजिए, इसमें क्या है 10 लोग मरेंगे खाकर, इतना पावरफुल जहर है। रावण ने चले चले गए। पुजारी आया कि अभी घर में वो खत्म हो गया होगा, आए तो देखा पत्नी ने बोला मैंने तो ऐसे ऐसे कहा है। फिर कहा दूसरी चीज क्या कि उन्होंने कि हाँ ये रोज चरणामृत लेता है ना, तो चरणामृत में मंदिर के अंदर हेड पुजारी ने जहर डाल दिया पूरा बोतल। रावण ने बेचारे को पता था, श्री रंगनाथ के सामने गए, दर्शन किया, प्रेयर्स किया और अपना हाथ आगे फैलाया और भर भर के चरणामृत को पिया और बैठ गए भगवान का स्मरण करने के लिए। अभी ये व्यक्ति सोच रहा था कि ये मरने वाला है और रामानुजाचार्य के शरीर में दिव्य भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे थे, तो इनको लगा कि ये विष का सारा प्रभाव है। तो फिर ये व्यक्ति तो रामानुजाचार्य को कुछ हुआ नहीं, ये व्यक्ति आके रामानुजाचार्य के चरणों में अपना माथा मारता है, पत्थर पर तो सारा फट जाता है। रामानुजाचार्य को उठाते, आलिंगन करते, क्षमा करते हैं। तो मतलब जब रेगुलर हम सुनेंगे पढ़ेंगे भक्तों के संग में तो एक छोटी छोटी चीजों में फेथ बिल्ड होगा और वो फेथ हमें प्योरीफाई करेगा। इसलिए कृष्ण भक्ति की छोटी छोटा कार्य भी आपको इनफ है कृष्ण के धाम ले जाने के लिए, शुद्ध करने के लिए। छोटी से छोटी कार्य, छोटा सा छोटा एस्पेक्ट। अभी कहाँ थे आप? यहाँ थे चरणामृत माता जी से। कृष्ण नाम का प्रचार करना, प्रभु जी बोलिए पास, रथ यात्रा में भाग लेना, प्रेयर्स प्रार्थना,
भक्ति में उत्साहित रहना,
उत्साहित रहना, तपस्या को स्वीकार करना। जैसे आप 2 दिन से तपस्या कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि इस तपस्या को अभी 13 तारीख तक कंटिन्यू करिए, नहीं भी करेंगे तो उनको जबरदस्ती करना पड़ेगा। आरत तो उपाय ना है गोपीनाथ, भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि हे गोपीनाथ मेरे पास और उपाय नहीं है क्योंकि दूसरा स्टेइंग अरेंजमेंट है नहीं। नेक्स्ट अर्च विग्रह के दर्शन करना, बेटी से दर्शन करना और भगवान की लीलाओं को पढ़ना सुनना, वैष्णव अपराध से बचना, निष्कपट रहना, तुलसी महारानी की सेवा करना। नेक्स्ट वैष्णव सॉन्ग्स को गाना, वाणी पर संयम रखना। क्लास का समय खत्म हो गया है मेरे लिए बंद करो बाबा, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। तब लाउड हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं और विराम देते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गुंडिचा मंदिर मार्जन महामहोत्सव के, चैतन्य महाप्रभु के, श्रील प्रभु